आज हम जिस पाठ की बात कर रहे हैं, हमारे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ये कहानी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कहानी पढ़ी भी होगी। दो कलाकार, बहुत ही मंजी हुई लेखिका है मनु भंडारी, उनकी द्वारा लिखी गई ये कहानी है जो हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल है। और देखते हैं कि ये जो कलाकार शब्द आया है, इसका किस तरह से इसकी परिभाषा यहाँ पर निकल कर आ रही है, खुल कर आ रही है, और किस तरह से हम इस कहानी में कलाकार की छवि को पहचानते हैं और समझ पाते हैं कि कलाकार, वास्तविक कलाकार कैसा होता है, क्या होता है और क्या क्या क्षमताएं उस कलाकार में होती हैं। तो आज के संदर्भ में जहाँ हिंदी में बहुत सारे प्रयोग भी हो रहे हैं और हम देखते हैं कि सामान्य अर्थों में तो हम कहते हैं, जैसे अगर मूर्ति बनाते हैं तो मूर्तिकार है, संगीत बना रहे हैं संगीतकार है, चित्र बना रहे हैं तो हम चित्रकार हैं, हम अभिनय कर रहे हैं, साहित्य गढ़ रहे हैं, हम साहित्यकार हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो व्यक्ति हैं, किसी कला से संबंध रखते हैं वे, और वे अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शन करते हैं अपने मनोभावों का, अपने विचारों का, अपने उद्गारों का, जो वे निरंतर अपनी कला को मांझते हुए चलते हैं, सोचते हैं और उसे वे अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो हम जब ये कहानी हम समझेंगे, पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, तो हमारे इस पाठ के कुछ उद्देश्य भी हैं जो हम एक बार सूचीबद्ध कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद हम क्या क्या कार्य करने में हम सक्षम हो जाएंगे इस कहानी के संदर्भ में। यहाँ इस कहानी में दो पात्र मुख्य हैं, हमारे मुख्य पात्र हैं चित्रा और अरुणा। तो इस कार्यक्रम को सुनने के बाद हम चित्रा के साथ साथ अरुणा को भी हम कलाकार सिद्ध कर पाएंगे, और यही दो जो मुख्य पात्र हैं हमारे, उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, इनकी चरित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं, हम उन विशेषताओं को भी बता पाएंगे। और हम कह सकते हैं कि कहानी का जो घटनाक्रम है, किस तरह से ये कहानी आगे चल रही है, बढ़ रही है, और किस तरह से इसका उतार है, इसका चढ़ाव है, और किस तरह से ये अपने शिखर पर आकर और इसका अंत हो रहा है, हम इसका भी उल्लेख कर पाएंगे किस किस तरह से ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं। कहानी के जो तत्व होते हैं, जैसे हमारा कथा वस्तु है, हमारा देश काल वातावरण है, हमारे चरित्र हैं, हमारी भाषा शैली है, उद्देश्य है, इन सब के आधार पर भी हम इस कहानी दो कलाकार की विवेचना कर पाएंगे। हमारी कहानी की भाषा शैली किस तरह की है, हम इसके बारे में भी टिप्पणी लिख पाएंगे। और इस कहानी में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग हुआ है, तो ये मुहावरे जो हैं, उनका हम कहीं और अगर प्रयोग करना चाहें तो हम किस तरह से कर पाएंगे, ये भी हम सीख पाएंगे। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों पर आधारित ये हमारा कार्यक्रम है। और हम इस कहानी, अमूमन देखा जाता है कि जब भी किसी भी पाठ्यक्रम में कहानी विधा आती है, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय विधा है, छोटे से ही बच्चे जो हैं वे कहानी सुनने की इच्छा रखते हैं, कहानी सुनने के प्रति उनकी रुचि होती है, और हर परिवार में, लगभग हर परिवार में जो बड़े हैं वो अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों को, या बुजुर्ग हैं तो अपने पोते पोतियों, नाते नातियों को वे कहानी के माध्यम से मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं, क्योंकि कहानी का जो उद्देश्य है वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, हम में वो संवेदनशीलता उत्पन्न करना, हम में वो मूल्यों को रोपना जिनके माध्यम से हम एक बेहतरीन इंसान बन सकें, इस विधा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो साहित्य का उद्देश्य भी यही है, बेहतरीन इंसान बनने के लिए हम किन किन मूल्यों को अपनाएं, यह भी उद्देश्य हमारा होता है। तो इस कहानी में भी कौन से मूल्य हैं जो शामिल हैं और अप्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष आएंगे, जो आप अनचाहे भी अप्रत्यक्ष रूप में भी अनायास ही आप उन्हें ग्रहण भी कर लेंगे। ये संवेदनशीलता अगर आप में है, आप समझ पाएंगे और आप ये मूल्य भी ग्रहण कर पाएंगे। तो ये कहानी जो है, हम इसको बीच बीच में, जिसे कहते हैं आउटलाइंस में, हम थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये कहानी है क्या। क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि ये कहानी आपने पढ़ी होगी, तो इसलिए हम इसे बिल्कुल अक्षर दर अक्षर ना पढ़ के इसे थोड़ा सा आउटलाइंस में हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने पहले से आपको स्पष्ट किया है कि हमारे दो जो हैं वो पात्र हैं, चित्रा और अरुणा, ये दोनों सहेलियां हैं और युवतियां हैं। तो ये दोनों आप में रह रही हैं और इनकी आपस में चुहल है और इनका आपस में मजाक है, उससे पता चल रहा है कि इनकी आपसी जो कहना चाहिए केमिस्ट्री है वो कितनी अच्छी है। और ये बहुत ही गहन सहेलियां हैं, बहुत ही गहन मित्र हैं। ये यहाँ से कहानी ये शुरू होती है जहाँ जो चित्रा है वो अरुणा को उठा रही है और वो उसे रूनी कहकर बुला रही है। ए रूनी, उठ। और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंख मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओ, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी, बदतमीज कहीं की। तो देखिए यहां पर कितनी बेतकल्लुफी है कि उन्हें आपस में उस चित्रा का इतना अधिकार है अरुणा पर कि वो उसकी सहेली सो रही है लेकिन उसे अपना चित्र दिखाना है, तो उसे उसने उसकी नींद से उठा दिया है। और वहां वो उसे भी जब उस दिखा रही कि इस चित्र के लिए उसने मुझे उठा दिया है, तो उसे वो बदतमीज कहकर भी बुला रही है। लेकिन एक तरह से चित्रा अरुणा से पुष्टि चाहती है कि देखिए चित्र देख इतना अच्छा बना है और इस पर मुझे इनाम जरूर मिलेगा। वो कह रही है, अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर से घुमाती हुई अरुणा बोली, कि इधर से देखूं ये तो बता दे, हजार बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी न हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। फिर तस्वीर पर आंख गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव की तस्वीर है। तो जिसे चित्रकला में एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट कोई चित्र अरुणा चित्रा ने बनाया है जिसे अरुणा समझ नहीं पा रही है। और जो संवाद यहाँ पर अरुणा ने बोला है, अमूमन चित्र किसी भी इस तरह के चित्र को देखकर अमूमन जो कहना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति इस तरह की बात कहता ही है कि हमें नहीं पता चल रहा है कि ये किसका चित्र है, क्या यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो वही बात यहाँ पर उसने कही है। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? अरे जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। तो यहाँ पर आपस में उनकी नोकझोंक हो रही है और आपस में जो उनकी नोकझोंक है उनसे पता चल रहा है कि वो बहुत ही अच्छी सहेलियां हैं। तो यहाँ पर जो अरुणा है, अरुणा मूड होने के लिए जैसे बाहर चली गई है, अब उठी गई है और जब वो मूड होकर आई है तो उसने देखा कि 3-4 बच्चे उसके कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोले कि दीदी सब बच्चे आकर बैठ गए, चलिए। तो यहाँ पर अब चित्रा कह रही है, क्योंकि अब यहाँ अरुणा ने चित्रा की तस्वीर का मजाक भी उड़ाया और उसे चिढ़ाया भी, तो यहाँ जो अरुणा है वो बच्चों को पढ़ाती है और चित्रा भी अब अरुणा का मजाक उड़ा रही है और कह रही है, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने भी, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, जरा लोगों को दिखाया ही करेंगे कि हमारी एक ऐसी मित्र साहिबा थी जो सारे दाइयों चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिता और समाज सेविका समझती थी। तो मजाक में वो कह रही है, लेकिन यहाँ इन शब्दों में चित्रा ने अरुणा के बारे में उसका जो कहना चाहिए कि जिस काम के प्रति वो बहुत पैशनेट है, बहुत लगन से वो काम कर रही, वो है कि जो भी सुविधा वंचित जो वर्ग है उनके बच्चों को वो पढ़ा रही है और पढ़ाकर उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो वहाँ पढ़ाती। तो यहाँ ये बात इस तरह से हो रही है। तो आगे जब कहानी हमारी आगे बढ़ती है तो वो कह रही है कि रात के 10 बजे थे और सारे हॉस्टल की बत्तियां नियमानुसार बुझ चुकी थी। तभी हॉस्टल के फाटक में जलती हुई टॉर्च लिए कोई घुसा। अपने कमरे की खिड़की में से झांकते हुए सविता ने कहा, ठाट तो हॉस्टल में बस अरुणा ही के हैं। रात 9 बजे लौटो, 10 बजे लौटो, कोई बंधा नहीं। हम लोग तो 10 के बाद बत्ती भी नहीं जला सकते। तो यहाँ अरुणा जो है वो देरी से आई है और उसके बारे में जो उसकी दूसरी जो हॉस्टल में रहने वाली जो दूसरी साथिन है वो ये बात कह रही है कि क्योंकि उस पर ये रुकावट नहीं है हॉस्टल में जल्दी आने की, तो वो आ तो वैसे छुप के ही रही है लेकिन ये तंज कसा जा रहा है उस पर। तो कह रही है कि लौट आई अरुणा दी, आज सवेरे से ही बड़ी परेशान थी। फुलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था, दोपहर से ही वे उसी के यहाँ बैठी थी, पता नहीं क्या हुआ बेचारे का, शीला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तो यहाँ आप जब ये कहानी आप पूरी क्रम से आप पूरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितनी भी ये संवाद है, चाहे वह सविता कह रही है या उसके बाद शीला ने ये बात कही है, तो यहाँ ये पता चल रहा है कि अरुणा जो है वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाती नहीं है, उनकी देखभाल भी करती है और बहुत ही संवेदनशील लड़की है जो दूसरों के दुख में शामिल होती है, उनकी देखभाल करती है और बहुत ही संवेदनशील लड़की है ये। तो यहाँ पर वो इसके बारे में यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। मैं कहती हूँ उन्हें यही सब करना है तो कहीं और रहें, हॉस्टल में रहकर यह तो नवाबी चलाती हैं, सो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। सारी लड़कियां डरती हैं तो कुछ कहती नहीं, पर प्रिंसिपल और वार्डन तक रौब खाती है इनका, तभी तो सब प्रकार की छूट दे रखी है। यानी हॉस्टल में रहती हैं तो वो पढ़ाई के लिए, उनका उद्देश्य वहां पर पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ वो साथ में ये समाज सेवा का भी कार्य वो करती है। तो यहाँ जो ये आपस में सखियों की जो बात हो रही है, सहेलियों की जो ये बात हो रही है, उससे पता चल रहा है कि कुछ लोग उसकी समाज सेवा के प्रति एक सकारात्मक रुख रखते हैं और कुछ लोग नकारात्मक रवैया रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अरुणा पढ़ाई के लिए यहाँ पर आई है तो उसे सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, उसे ये जो समाज सेवा वगैरह है ये फालतू का काम है और इस सब में नहीं लगना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत प्रभावित भी हैं, तभी वो ये कह रहे हैं कि तू भी जिस दिन हार्ड तोड़कर दूसरों के लिए यूं परिश्रम करने लग जाएगी। यहाँ पर ये मुहावरा आ रहा है, आप ध्यान देंगे तो आपको ज्ञात होगा, हार्ड तोड़कर मेहनत करना यानी बहुत अधिक मेहनत करना। जैसे दिवाली के समय बच्चों ने अपने घर की हार्ड तोड़कर सफाई की, मतलब बहुत ज़्यादा सफाई की, या बोर्ड आ रहे हैं तो विद्यार्थी जो हैं वो हार्ड तोड़कर मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर है कि बहुत ही अधिक, बहुत अधिक मेहनत करना, हार्ड तोड़कर परिश्रम करना। तो कह रहे हैं कि तू भी जिस दिन हार्ड तोड़कर दूसरों के लिए यूँ परिश्रम करने लग जाएगी ना, उस दिन तेरा भी सब रौब खाने लगेंगे, पर तुम्हें तो सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती, दूसरों के लिए क्या खा काम करोगी। अच्छा अच्छा चल अपना लेक्चर अपने पास रख। तो इस तरह से अरुणा अपने कमरे में घुसी है और बिल्कुल चुपचाप घुसी है ताकि चित्रा की नींद खराब ना हो, लेकिन चित्रा जग रही है। दोपहर से ही अरुणा बिना खाए पिए बाहर थी तो उसे नींद कैसे आती। यानी दोनों सखी जो है, दोनों सहेलियां एक दूसरे का ध्यान रखती हैं। जहां अरुणा इस बात का ध्यान रख रही है कि उसकी नींद खराब ना हो, वहीं चित्रा उसकी ही चिंता में जाग रही है, वो सोई नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचती हैं। तो उसने मेस से उसका खाना लाकर मेज पर रखा हुआ था, तो मेज पर से उसने अपना खाना वाना खाया, और उसके बाद वो बातें कर रहे हैं और अरुणा बता रही है अपनी दोस्त को, चित्रा को, कि मैं बच्चा नहीं बचा, चित्रा किस तरह उसे नहीं, किसी भी तरह उसे नहीं बचा सके, तो वो दुखी है। क्योंकि समाज सेवा में लीन है, उनका दुख, लोगों का दुख उसे अपना दुख लगता है और उनकी सेवा भी वो करती है, तो अगर कहीं इस तरह की अनहोनी हो जाती है कि बच्चा बीमार है और बच्चा बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो उसे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना उस बच्चे के परिवारजन को दुख हो रहा होगा। तो इस तरह से वो अपना दुख उसके साथ बांट रही है, और जो चित्रा है वो कह रही है कि अब भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा खा ले। नहीं चित्रा, अब रहने दे, अब बस तू लैंप बुझा दे। तो इस तरह से एक जो सामान्य जो गतिविधि थी खाना खा लेने की, उसे खाना नहीं खाया गया क्योंकि वो चिंता कर रही थी इस बात की। तो इसके बाद भी कुछ दिन अरुणा जो है वो उदास रही, और यहाँ ये बताया जा रहा है आगे, कहानी जब आगे बढ़ रही है, कि जो अरुणा है वो कहीं गई है, तो चित्रा उसकी प्रतीक्षा कर रही है चाय लिए हुए। तो थोड़ी देर के बाद चित्रा आई है और आपस में वो लोग अपनी कोई व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं। यहाँ इस कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो इसका जिक्र है, और जो हमने पहले भी बात की, इस इन कहना चाहिए कि बहुत ही सामान्य सी बातों के माध्यम से उनकी आपस की इंटीमेसी पता चल रही है कि वो कितनी गहरी दोस्त हैं। बहुत ही कहना चाहिए कि बेतकल्लुफी से वो ये बातें कर रही हैं। तो जो चित्रा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो बहुत ही, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही समृद्ध घर से है, और बता रहे हैं कि हाँ भाई, पिता की, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकते। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? तो चित्रा कहती है, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से क्या मतलब? दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलियों में डूबी रहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं, तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। बस हर घड़ी, हर जगह और हर चीज में तो अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। तो पहले हमने देखा कि अरुणा का स्वभाव क्या है, अरुणा का शौक क्या है, और किस तरह से वो अपना कार्य करती है। यहाँ पर चित्रा के बारे में बताया जा रहा है कि यद्यपि वो बहुत ही धनाढ्य घर से है, लेकिन उसे, वो कला प्रेमी है और बस उसे अपनी रंगों की दुनिया में ही रहती है, अपनी तूलियों की, ब्रशेस की ही दुनिया में वो रहती है, और हर जगह वो यही ढूंढती है कि किसी भी परिस्थिति में अगर इस परिस्थिति का अगर चित्र बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा। तो उसमें बहुत अधिक लगन है। तो इसी बारे में आगे कहा जा रहा है कि अरे, इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं कि वह समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी शोहरत गूंज उठेगी। यानी वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की है, और उसके जो गुरु हैं उन्होंने भी ये कहा है कि तुम बहुत अच्छी चित्रकार हो और तुम बहुत नाम कमाओगी। तो अब आगे वो कह रही है कि अरुणा इस बारे में कह रही है कि कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, यानी तेरे पास धन है, चित्र बनाने से क्या होगा, तुम लोगों की जिंदगी क्यों नहीं संवारती? अब चित्रा का ये कहना है कि वह काम तो तेरे और मनोज के लिए, मनोज जो चित्रा का पुरुष मित्र है उसके लिए छोड़ दिया है, और माफ कीजिएगा अरुणा का। तो तुम दोनों ब्याह कर लो और फिर जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। यानी अरुणा है और अरुणा के साथ उसका मित्र है मनोज, दोनों को ही समाज कल्याण का बहुत कहना चाहिए कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है समाज कल्याण के कार्य कार्य करना। तो वो कह रही है चित्रा उसको कि ये तुम लोगों का ही काम है और तुम दोनों ही ये काम करना। और ये अच्छा ये बता कि तेरे यह सब करने से क्या हो जाएगा? तूने अपनी अनोखी पाठशाला में अब चित्रा को अरुणा का जो उद्देश्य है, अरुणा जिस उद्देश्य के साथ अपना कार्य कर रही है उसे उसमें कोई बहुत ठोस कहना चाहिए कि उसका औचित्य नजर नहीं आता है। और यहाँ पर वो एक बहुत ही गंभीर बात करते हुए ये कह रही है कि अच्छा ये बता कि तेरे लिए यह सब करने से क्या हो जाएगा? तूने अपनी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा दिए तो क्या निरक्षरता मिट जाएगी? अरे यह सब काम एक के किए नहीं होते। जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने का नहीं, और ढांचा ही बदल गया तो मेरे तेरे कुछ करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप ही हो जाएगा। यानी जो समाज है उसमें इतने लोग हैं, अगर बहुत थोड़ा सा प्रयास है अरुणा द्वारा जो किया जा रहा है उसका कोई महत्व ऐसा लगता है जैसे चित्रा को नहीं प्रतीत होता। उसे लगता है कि इतने बड़े समाज में अगर थोड़ा बहुत ये कार्य कर भी लिया तो उससे क्या होगा, ये तो बिल्कुल सागर में बूंद की भांति है। तो इस तरह से इन दोनों में कला और जीवन को लेकर लंबी लंबी बहसें होती, जहां चित्रा को अपनी कला से इतना लगाव था कि उसे हर परिस्थिति में चित्र का ही उसे आइडिया आता था, उस विचार आता था। वहीं पर अरुणा को हमेशा इस बात का ख्याल आता था कि वो किस तरह से अपने आप को उपयोगी बना सकती है समाज के उत्थान में। तो इस तरह से यहाँ पर ये इनका आपस में वार्तालाप चलता रहता था। तो कुछ एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और रोज अखबार में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं लेती थी। अरुणा सारे दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। अब उसे तो ये बात तो उसके लिए बहुत ही चिंता लाने वाली थी, उसे बहुत चिंतित करती थी कि बाढ़ इतनी अधिक आ गई है और वर्षा लगातार हो रही है। तो जो भी बाढ़ पीड़ित थे उनके लिए कोई सहायता वो कर सके इसके लिए वो चंदा इकट्ठा करती थी। तो एक दिन आखिर चित्रा ने कह ही दिया, तेरा इम्तिहान सर पे आ रहे हैं, तू पढ़ती लिखती तू है नहीं, सारे दिन बस भटकती रहती है, फेल हो गई तो तेरे ससुर साहब क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही में पानी में बहाया। तो कहती है अरुणा, आज शाम को एक स्वयं सेवकों का दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूं। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वो लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार है, क्योंकि वो वहां पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने में लगी थी तो उसे अपनी देखभाल करने का समय नहीं मिला। तो अरुणा ने क्या किया, अरुणा नहा धो ली, खा पी कर जब वो आराम करने लगी तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। चित्रा ने उसके पीछे से, जब वो 15 दिन नहीं थी वहां हॉस्टल में, तो उसने कुछ चित्र बनाए थे। तो 3 चित्र बने रखे थे और तीनों बाढ़ के चित्र थे। अब देखिए, एक परिस्थिति को देखने का समझने का तरीका है। चित्रा ने बाढ़ की स्थिति के चित्र बनाए हैं और अरुणा ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता की है। चित्रा कला प्रेमी है इसलिए उसने बाढ़ की जो स्थिति थी उसे एक कलाकार की, एक चित्रकार की नजर से देखा। लेकिन अरुणा एक समाज सेविका है इसलिए उसे उस उसके लिए चिंता की यह बात थी कि बाढ़ पीड़ित बहुत अधिक दुखी थे और बहुत ही त्रस्त थे, तो वो उनकी सहायता के लिए अपनी पढ़ाई, जो सिर पर उसके इम्तिहान आ रहे थे, उन्हें भी वह छोड़कर उनकी सहायता के लिए वो चली गई थी। तो तीनों बाढ़ के चित्र थे, जो दृश्य वह अपने आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसे कैसा हो आया, यानी उसका मन दुखी हो गया, क्योंकि उसने तो सामने प्रत्यक्ष रूप से उस बाढ़ की विभीषिका को देखा है, उसकी तबाही को देखा है, उन दुखी लोगों को देखा है। वहां लोगों के जीने के लाले पड़ रहे हैं और उसमें भी इसे चित्रकारी सूझती है। और न जाने कितनी बात सोचते सोचते वह सो गई। तो इस तरह से बाढ़ का वो है स्थिति है, और वहां पर यहाँ बाढ़ में यह जो अरुणा है वो सेवा करने में लगी है और चित्रा ने चित्र बनाए हैं। तो आगे चित्रा को जाना है और हॉस्टल में उसको शानदार विदाई मिली है, वो चली गई है। तो अरुणा जो है सारा काम समाप्त करके उसकी राह देख रही है, और भी कई लड़कियां वहां जमा हैं और लेकिन चित्रा लौटी नहीं है। तो वो 5 बजे की गाड़ी से जाने वाली थी, तो अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखा आखिर बात क्या है। तो चित्रा उसी समय आई और उसने कहा, चित्रा ने उसको बताया कि गर्ग स्टोर के सामने, वो क्यों देर हो गई उसका कारण वो बता रही है कि गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना, लौटी तो देखा वह वही मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में, मैं अपने को रोक न सकी, एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इतनी में देर हो गई। यहाँ एक स्त्री मरी पड़ी है और उसके बच्चे वहां बैठे हुए हैं, उसमें चित्रा उनका चित्र बनाने की लालसा से देर हो गई, क्योंकि वो उसका उनका रफ स्केच बना रही थी। और इसी बारे में बात हुई और उसके बाद चित्रा जो है वहां से चली गई, वो विदेश गई और उसने बहुत नाम कमाया। उसके जो चित्र थे उनकी बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब वो बहुत ही वहां पर पसंद किए गए। और यहाँ लिखा उसने उस भिखारिन और उसके बच्चों का चित्र भी जो बनाया, उसमें भिखमंगी और दो अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठ चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से उसने पत्र व्यवहार किया, लेकिन उसके बाद फिर लगभग बंद हो गया। तो वो लगातार ही काफी बिजी है, काफी व्यस्त है। तो अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था और बहुत सारी उसकी प्रदर्शनियां भी, उसके चित्रों की बहुत सारी प्रदर्शनियां भी हुई। और उस चित्र में कुछ ऐसा था जो किसी भी देखने वाले को अपनी ओर खींचता था। तो बहुत ही अधिक लोकप्रिय उसकी यह जो भिखारिन वाला जो चित्र था वो हुआ। तो अब 3 साल के बाद चित्रा लौटी, भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बेटी की इस कामयाबी पर गदगद थे, समझ नहीं पा रहे थे उसे कहाँ कहाँ उठाएं बिठाएं। दिल्ली से उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया था। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। अब बताया जा रहा है कि जो चित्र उसने उस समय खींचा था, जो बनाया था, उसकी इतनी अधिक प्रशंसा हुई है और बहुत भीड़ उस चित्र को देखने के लिए भी बहुत लोग आए हैं। और चित्रा को लग रहा था कि जैसे उसके सपने साकार हो गए, क्योंकि एक चित्रकार के रूप में, एक उभरती हुई चित्रकार के रूप में वो जब कॉलेज में थी तो वो यही सपना देखती थी कि उसके जो चित्र हैं वो भी अमृता शेरगिल की तरह ही बहुत नाम कमाए, बहुत ही प्रसिद्धि कमाए और उसे अब लग रहा है कि उसका ये जो सपना है वो पूरा हो गया। इस प्रदर्शनी में जो भीड़ आई थी उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर वह भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़ी अदा से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी उनका और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। अब देखिए ये हमारी जो हमारी कहानी है ये अपने उतार और चढ़ाव और सारी तरह की स्थितियों से पार अब ये अपने क्लाइमैक्स पर जा रही है, अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ हम ध्यान से सुनेंगे तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ हमारी जो लेखिका हैं वो किस तरह से बताना चाहती हैं कि कलाकार कौन है। तो अब चित्रा जो है अवाक है, उसे लग रहा है कि इतने बड़े बच्चे, 3 साल के बाद वो आई है और ये बच्चे तो काफी बड़े हैं। तो तभी अरुणा ने टोका, कैसी मासी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। प्यार का जरा सा साहस पाकर लड़की चित्रा की गोदी में जा चढ़ी। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मासी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। सच? आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी। अब तो मासी तुम जरूर ड्राइंग में फर्स्ट आती होगी। मैं भी अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ, तुम हमारे घर आओगी तो अपनी कॉपी दिखाऊंगी। बच्ची के स्वर में मुकाबले की भावना थी। चित्रा और अरुणा इस बात पर हंस पड़े। बच्ची का अबोध जो कथन था, कहाँ वो इतनी बड़ी चित्रकार है और यहाँ ये छोटी सी बच्ची अपनी ड्राइंग पर भी इटला रही है कि मैं भी फर्स्ट आती हूँ और आप देखना मेरी कॉपी को, मैंने भी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाई हैं। तो दोनों हंस पड़ी। आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए मासी, समझा समझा कर, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा समझाती हुई तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वह उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने जा पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मासी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने कहा, इनकी माँ मर गई, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन की छाप लगाई, क्योंकि बच्चा बड़ा है और वो समझ पा रहा है कि इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है। ये सचमुच के बच्चे थे मासी? बालिका का स्वर करुणा से करुणतर हो गया। यानी एक छोटी सी जो बच्ची है जब वो इस तस्वीर को देख रही है कि एक माँ जो है वो मरी पड़ी है और उसके बच्चे वहां पर बैठे रो रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि कल्पना होगी, अगर ये सचमुच था तो ये तो बहुत बुरा था। तो वो पूछना चाह रही है, उसके जो स्वर है उसमें करुणा है। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। हाय राम, इनकी माँ मर गई तो फिर इन बच्चों का क्या हुआ? बालक ने पूछा। मासी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। यानी इतने छोटे बच्चे थे वे भी उस तस्वीर को बहुत देर तक देखकर कहना चाहिए कि उसकी प्रशंसा की बहुत अच्छी तस्वीर है, ऐसा करने में वो असमर्थ खुद को पा रहे थे, क्योंकि उस तस्वीर में जो भाव वहां पर व्यक्त किया जा रहा था उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हो रहे थे। उसकी कला की अपेक्षा उस भाव से वो बहुत उनका मन पसीज रहा था, करुणा से वो भर गए थे। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। बच्चों को आप बच्चों को प्रदर्शनी साधारण बातचीत के बाद अरुणा ने दोनों बच्चों को अपने पति के हवाले करते हुए कहा कि आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। और बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे, वे उन्हें एकटक देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच से बता रुनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताओ ना, मुझे बेवकूफ बनाने वाली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? विस्मय से चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में ही खो गए। तो ये जो हमारी ये कहानी है, इससे आप भी समझ रहे हैं कि चित्रा सतही तौर पर कलाकार हो सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में जिसने उन बच्चों का चित्र नहीं खींचा, जिसने उन्हें अपनी आंचल की छाओं में रखा, उनका पालन पोषण किया, उनको उन अनाथ को आश्रय दिया और माँ का प्यार दिया, वो अरुणा किसी भी तरह से उस प्रसिद्धि प्राप्त चित्रा से कमतर कलाकार नहीं थी, बल्कि कहना चाहिए कि वो एक बेहतरीन कलाकार सिद्ध हुई है। इस कहानी में मनु भंडारी जी की ये कहानी है, और इनकी कहानियों की ये एक खास उनका एक ही खास विशेषता उनकी ये रही है कि जिस तरह से कहानी चलते चलते जब वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, तो जो उसका सस्पेंस जब खुलता है, तो लगता है कि ये किसी और धरातल पर जाकर इसने हमें रखा है, जहाँ हमारी जो संवेदना है, बहुत ही कहना चाहिए कि जो जिन जिन्हें आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उन संवेदनाओं तक को छूने में समर्थ हैं मनु भंडारी जी अपनी कहानियों के माध्यम से। तो ये हमारी कहानी है, और कहानी का जो के जो मुख्य हमारे जो इस कहानी के चरण हैं, ये हमारे इस पाठ्यक्रम में भी दिए गए हैं। आप भली भांति इन्हें पढ़ सकते हैं, और इसमें हमारे जो कहानी के जो तत्व हैं, जिसे हमने आप कार्यक्रम आरंभ हो रहा था और हमने आरंभ में ही इसे बताया था, जैसे कथा वस्तु है, कथा वस्तु आप भली भांति समझ सकते हैं, घटनाएं हैं और पात्र हैं। घटना घटनाओं किसी भी घटना में पात्रों का किस तरह का क्रिया प्रतिक्रिया रहती है, वो सब कथा वस्तु का स्वरूप तैयार करता है। तो और इन कई बार क्या होता है, घटना की प्रधानता होती है और कई बार पात्रों की प्रधानता होती है। तो इस कहानी में जो है कथा वस्तु से आप भली भांति परिचित हैं, हमने इतने विस्तार से उस पर बात भी की है। तो देश काल वातावरण का अगर हम देखें, तो बहुत अधिक भूमिका देश काल वातावरण की नहीं है, बस इतना हम कह सकते हैं कि जो इसमें एक हॉस्टल का समाज है, और वहाँ पर लड़कियाँ हैं, रह रही हैं, अनुशासन है, और उस अनुशासन को किसी अच्छे मंशा से तोड़ने का प्रयास दो पात्र हैं ये हमारे, उसमें अरुणा करती भी है। और ये जो कहानी है, इसमें बाढ़ का चित्रण है, और अगर हम शैक्षिक दृष्टि से देखें, तो आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं ये लड़कियां, इन्हें आज़ादी है, और जिस तरह से ये खुलकर बात करती हैं अपने मित्रों के बारे में, दोस्तों के बारे में, उससे भी पता चलता है कि इन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता मिली है और वे इस स्वतंत्रता का भी सही उपयोग भी वे कर रही हैं। जैसे चित्रा है, उसने अपनी कला को एक दूसरे ही उस पर स्तर पर वो अपने लेकर गई है। विदेशों में भी वो घूमी है और उसने जिस सपने को वो लेकर बड़ी हुई थी, उसने उस सपने को पूरा करने का दमखम भी रखा है। और अरुणा जो है, वो 15 दिन के लिए बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जा रही है। तो कहना चाहिए कि संकीर्णतावादी समाज नहीं है, बहुत ही खुली सोच वाला समाज है और आत्मविश्वास है इन लड़कियों में, निर्णय लेने की क्षमता है। और देखेंगे आपकी ये, जैसे अरुणा है, 2 बच्चों को ले आना और उसके पति का भी इस निर्णय में सहयोग देना, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कहना चाहिए कि समाज के भी हित में है अगर इस तरह के निर्णय अगर युवा पीढ़ी लेती है, तो समाज की जो दिशा है और दशा दोनों ही बेहतरीन होंगी अगर इस तरह से स्त्रियों को निर्णय लेने का भी अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से ये हमारा देशकाल वातावरण है। और चरित्र चित्रण, हमने जब इस कहानी को पढ़ा, जैसे बीच बीच में से आउटलाइंस इसकी पढ़ी, तो हमने देखा कि अरुणा और चित्रा का किस तरह का आपसी उनका संबंध रहा है, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी रखती हैं, किस तरह से जो अरुणा है एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है, संस्कारों से वो परोपकारी है और सिर्फ अपने कर्म के प्रति ही समर्पित नहीं है, वो समाज के प्रति भी बहुत जागरूक लड़की है और उसे वो संवेदनशील है, सामान्य लोगों के मुकाबले कुछ ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए वो अपन पूरा प्रयास कर रही है कि किसी न किसी रूप में वो समाज की सहायता कर सके। तो इस तरह से भी यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही संवेदनशील है और उसे रोगियों से, दुखियों से, पीड़ितों से उसे प्रेम है, स्नेह है और वो बहुत सेवा भाव है उसमें बहुत अधिक है। और वैसे एक बहुत ही हंसमुख प्रवृत्ति की लड़की है और खुश रहती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात जो अरुणा के चरित्र में है वो ये है कि वो बहुत अधिक संवेदनशील है। अगर वो इतनी संवेदनशील नहीं होती तो वो भी चित्र की सिर्फ प्रशंसा करके आगे बढ़ जाती, लेकिन जब उसने वो पता चला, जब उसने रफ स्केच दिखाया और बताया था जब वो विदेश घर जा रही थी चित्रा वापस, तो तब जैसे उसे पता चला कि भिखारिन मर गई है, 2 बच्चे वो है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उस समय जाकर ही उन बच्चों को ले आई थी, इतना दर्द उसके मन में उन बच्चों के प्रति था। तो इस तरह से ये अरुणा का चरित्र है और आप अपने शब्दों में भी इसका चरित्र चित्रण कर सकते हैं। इस कहानी के आधार पर आपको भली भांति ज्ञात हो ही गया होगा कि जो अरुणा का जो चरित्र है वो किस तरह से इस कहानी को अंत तक पहुंचाने में किस तरह से मददगार हुआ है। तो उसमें दया है, परोपकार है, उसमें मैत्री की भावना भी है और कर्म के प्रति समर्पित है। तो ये भी तो हम मान ही सकते हैं कि ये जो कहानी है ये किस तरह से हमें समाज के प्रति एम्पैथी रखने के लिए, एक संवेदना रखने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि हम अपने अपने बारे में सोचेंगे तो हम क्या हैं, हम इंसान तो नहीं होंगे। तो अगर हमें वाकई इंसान के रूप में खुद को परिभाषित करना है, खुद को समझाना है, तो हमें हर तरह से उन कार्यों में प्रवृत्त होना पड़ेगा जो समाज के हित में हो, जैसा कि अरुणा ने किया। और चित्रा का चरित्र जो है वो आपने सुना और समझा, बहुत नियंत्रित व्यवहार है चित्रा का। ये कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद।